ध्यान से शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान करने के लिए एक लंबा गहरा सांस लें। रिलैक्स। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अपने ध्यान को ले जाते हुए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, जीवन की सफलताएं और असफलताएं मेरे भीतर अहंकार को जन्म देती हैं, रोष को उत्पन्न करती हैं। हे प्रभु, मेरी सारी सफलताएं आप ही की सफलताएं हैं। हे परमपिता परमात्मा, हर असफलता एक चुनौती है जो मुझे संबल प्रदान करती है, जो मुझे शक्ति प्रदान करती है। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आशीर्वाद दें कि मैं अपने अहम भाव को छोड़ता चला जाऊं। हे प्रभु, मेरी बुद्धि, मेरी कर्मठता, मेरा परिश्रम सब आपके द्वारा है, आपकी शक्ति से है। हे प्रभु, मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपसे पोषित है और मेरे द्वारा किया गया हर कर्म आपके द्वारा दी गई शक्ति से संभव है। हे परमपिता, मेरा अहम का भाव सदा के लिए मिट जाए, मैं सब में खुद को देख सकूं और खुद में सबको देख सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं सबके लिए जी सकूं और सब में आपको देख सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। हे प्रभु, जीवन से सारे दिखावे मिट जाएं, सारे आडंबर हट जाएं, शुद्ध रूप में, आत्म रूप में आपका सेवक होकर मैं अपने कर्म को करता चला जाऊं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, चाहे कोई छोटा हो, अल्पज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मैं सबकी सेवा करता हुआ, सबके काम आता हुआ, सबके जीवन को ऊपर उठाता हुआ आपके पथ पर, आपकी राह पर आगे चलता चलो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। ओ शांति 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 ही। ओम तत्सत। परमात्मा ने नमः। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान करने के बाद अब हम वापस लौटते हैं गीता माँ की शरण में। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक पर हम बात कर रहे हैं, चारों पुरुषार्थों के विषय में हम बात कर रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ पर हमने थोड़ी सी बात की। थोड़ा और इसे समझते हुए आज के सत्र में हम थोड़ी सी और गहराई लेने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि जीवन की साधना में कैसे हम आगे बढ़ें। कैसे हम जीवन के उस परम आनंद को अपने भीतर खोज लें ताकि बाहर के सारे भटकाव मिट जाएं। कल के सत्र में हमने चर्चा की, परमपिता परमात्मा इस सृष्टि को निर्मित करते हैं अपने आनंद में, और चारों तरफ पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व परमात्मा का आनंद है। हमने कहा कि कल प्रेम जी के प्रश्न पे बात हुई, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, तो हमने जाना कि व्यक्ति जो है दो तरह से अपने जीवन को जीता है। एक आदान प्रदान का जीवन है, मुझे क्या मिला मैंने क्या दिया। कल के सत्र में तन्वी मैम ने एक प्रश्न रखा था और आज हम उस प्रश्न को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। मैम ने कहा कि सर, प्रेम हमारा स्वभाव है, लेकिन परिस्थितिवश किसी व्यक्ति से पहले प्रेम रहता है और फिर कुछ कारण से वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। अगर हम इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझें, क्योंकि हम काम पुरुषार्थ के विषय में इसी खास टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से, जैसे कल हमने बात की, रिश्ते हमेशा दो, उनकी दो बुनियादें हैं, दो तरीके से या दोनों में से किसी एक तरीके से हम किसी भी रिश्ते की बुनियाद रखते हैं। एक आदान प्रदान पर बुनियाद टिकी रहती है, मुझे क्या मिलता है और मैं क्या दे पाता हूं। और जब इस प्रकार की बुनियाद होती है तो व्यक्ति हमेशा, चाहे वो कॉन्शियसली सोचे या ना सोचे, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली लगातार कहीं ना कहीं एक गणना चलती रहती है, और उस गणना में व्यक्ति सोचता है मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। आप समझ के चलिए, मान के चलिए, मानव का मन जो है वो थोड़ा मतलब खुद की तरफ झुकता है, तो हमें हमेशा लगता है मैं ज़्यादा देता हूँ और मुझे कम मिल रहा है। और जैसे जैसे ये अनुभूति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ये फीलिंग बार 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 और अनुभव में आती है, रिश्ते के बीच की दूरियां जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो आदान प्रदान पर आधारित जितने भी संबंध हैं, चाहे वो बाप बेटे के संबंध हैं, चाहे वो भाई बहन के संबंध हैं, चाहे वो पति पत्नी के संबंध हैं, चाहे वो मित्रों के संबंध हैं, वो हमेशा ढीले होते जाएंगे। लगेगा कि कुछ कम मिल रहा है, और आप मान के चलिए चाहे कितना भी मिले कम ही लगेगा। आप कितना भी दें सामने वाले को हमेशा कम ही लगेगा, और सामने वाला आपको कितना भी दे आपको भी कम ही लगेगा। ये बड़ी कमाल है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि रिश्तों की बुनियाद आदान प्रदान पर नहीं रखनी चाहिए। वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं, वो कहते हैं अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। अगर ये संसारिक बुनियाद है, क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ये संसारिक बुनियाद है, स्वाभाविक है। मानव की जो सभ्यता है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें ये ठीक प्रतीत होती है। लेकिन जो अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए व्यवस्था दूसरी है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि प्रकृति जिस प्रकार से देती है, सूर्य हमें रोशनी देते हैं और कुछ नहीं मांगते, पुष्प अपना सौंदर्य बिखेरते हैं, अपनी खुशबू बिखेरते हैं और हमसे कुछ नहीं मांगते, तो कहते हैं कि हमारे भीतर जो है वो प्रेम एक सुगंध की भांति होता है, वो फैलता है और फैलता है और फैलता है, और उसमें कौन भीग रहा है पता नहीं। वो व्यक्ति अनपढ़ है, वो गवार है, वो बेकार है, वो क्रोधी है, वो लालची है, पता नहीं क्या है, राम जाने कैसा है। जैसे एक पुष्प ये ध्यान नहीं रखता कि उसकी सुगंध से कौन हर्षित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से जब हमारी जो फाउंडेशन है वो आत्मिक फाउंडेशन होती है, संबंधों की फाउंडेशन जो है आपका स्वभाव होती है, तो फिर उसमें आदान प्रदान की गुंजाइश नहीं होती। आपका स्वभाव है, सामने वाला कुछ भी करे कैसे भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता। शांति आपका स्वभाव है, आनंद आपका स्वभाव है, अहंकार रहित होकर जीवन को जीना आपका स्वभाव है। तो आप तो अपने ही स्वभाव में, अपने ही आनंद में, अपनी ही खुशबू में भीगे जा रहे हैं। आप अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़े जा रहे हैं, आप प्रभु को जो है प्रार्थना करते जा रहे हैं कि हे प्रभु मेरे स्वभाव में थोड़ा सा ये भी जोड़ दीजिए, थोड़ा ये भी जोड़ दीजिए, थोड़ा और अच्छा बना दीजिए। आप अपनी साधना में, ज्ञान की साधना में, जीवन की साधना में अपने आप को ऊपर उठाते जाते और उस पूरी प्रक्रिया में हिसाब किताब नहीं रहता। जैसे फूल कभी हिसाब नहीं रखते कि मेरे सौंदर्य का किसने कितना उल्लास भरा, किसको कितना आनंद उससे प्राप्त हुआ, मेरी खुशबू को किसने कितना लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो तन्वी मैम ने प्रश्न किया कि पहले ऐसा लगता था कि अधिक प्रेम है, अभी थोड़ा कम प्रेम में अनुभव में आता है। तो सही मायने में दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि जो फाउंडेशन है वो आदान प्रदान पर आधारित हो और अब वो आदान प्रदान थोड़ा किसी न किसी तरह से इम्बैलेंस हो गया है। अगर वो हमारे स्वभाव पर आधारित फाउंडेशन है और फिर ऐसा महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि हम रुष्ट हैं, जीवन की तकलीफों से, जीवन की परेशानियों से थोड़ा सा हम थोड़ा तकलीफ में है। और जब तकलीफ में व्यक्ति होता है तो संकुचित होता है, सिकुड़ता है। जब वो सिकुड़ता है तो दूसरों से जुड़ नहीं पाता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं नियमित रूप से जो है वो स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन। और स्वयं के अध्ययन से क्या तात्पर्य? देखना कि मेरे भीतर जो संवेदनशीलता है, करुणा है, प्रेम है, दया है, सौहार्द है, आनंद है, शांति है, वो बढ़ रही है कि सिकुड़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब मैं साधना के पथ पर ठीक से आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब परमात्मा की कृपा लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब मेरी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी और जोर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, थोड़ा और जोर से उस परमपिता परमात्मा को रिझाने की जरूरत है, उसके सामने थोड़ा सा रो देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और आगे एक 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 पॉइंट को लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब किसी से मैत्री होती है हम उसे कैसे निभाते हैं? अलग अलग तरीके। तो हम जब दूसरों से जुड़ते हैं, मैत्री एक 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 डायमेंशन है उसका, कैसे हम उसकी साधना करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि मैत्री में दो चीज़ें होती है, एक आप होते हैं और एक आपका मित्र होता है, ऐसा प्रतीत होता है, तभी तो मैत्री घटित होगी, है ना। लेकिन गीता माँ के शरण में जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा है नहीं। वो कहते हैं मैत्री तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है। तुम पंछियों के साथ जो है ये मैत्री भाव रख सकते हो, तुम वृक्षों के साथ इस भाव को रख सकते हो, तुम धरती माँ के साथ इस भाव को रख सकते हो, परमपिता परमात्मा के साथ भी इस भाव को रख सकते हो। तो ये तुम्हारा भाव है। क्या ये भाव आपके भीतर लगातार बढ़ता चला जा रहा है? तो ये जो आखिरी श्लोक है गीता माँ का, ये श्लोक हमें क्या कहता है? ये हमें एक पैमाना देता है, ये एक हमें स्केल देता है। देखो ये सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, इसका मतलब गीता तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, वो उतर रही हैं हमारे जीवन में, वो ज्ञान हमारे जीवन में खिल रहा है, फूल रहा है, पल रहा है। तो काम पुरुषार्थ की साधना करते हुए क्या वो मैत्री का भाव भीतर खिल रहा है क्या? तो उस भाव को पकड़ना, उस भाव को लेना। क्या हम दूसरों के साथ, दूसरों के ऊपर आसानी से हम उनको ट्रस्ट कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते क्या? तो वो भाव हमारे भीतर कितना मजबूती से खिल रहा है। तो ये एक चीज़ है, मैत्री के भाव को समझें, उसको अपने भीतर कल्टीवेट करें, उसको अपने भीतर गहराई से उसको जड़ें पकड़ने दें। फैमिली के जो बॉन्ड्स हैं, परिवार के जो बॉन्ड्स हैं, वो कैसे जा रहे हैं? क्या दिन प्रतिदिन वो मजबूत हो रहे हैं क्या? और हमारा प्रयास रहना चाहिए, परिवार में हर सदस्य का अपना एक स्वभाव, और पता है हमारे भीतर एक जज भी है, हम लगातार निर्णय करते जाते हैं और जज हमारे भीतर है। वो जज क्या करता है? पहले दूसरों को जज करता है, मेरा बेटे का स्वभाव कैसा है, मेरे पति के स्वभाव कैसा है, मेरी पुत्री का स्वभाव कैसा है, मेरे परिवार के जो दूसरे जन हैं उनका स्वभाव कैसा है। लगातार 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 उस स्वभाव को वो जज करता है, और जज करने के बाद अब मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका निर्णय करता है। ये सारी आदान प्रदान की व्यवस्था है। तो फिर भगवान गीता माँ में क्या क्या हमें इशारा करते, क्या वो कहते, किस तरह से इनको लेना चाहिए, किस तरह से हमको फैमिली के संबंधों को जीना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि देखो, हर जीव जो है वो जन्म जन्मांतर से अपने साथ अपने संस्कारों की एक पोटली लेके आया है, उसके अपने प्रारब्ध के कर्म है, उसका स्वभाव भी कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध से प्रभावित है। अगर वो क्रोधी है, अगर उसमें कुछ दूसरे, उसमें स्वार्थ है, उसमें ईर्ष्या है, अगर इस तरह के कुछ वो हैं, और आप इन गुणों से को देख करके और आपको लगता है कि नहीं ये तो बेकार, तो अगर वो एक 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 भाव जो है, एक 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 तिरस्कार का भाव अगर भीतर पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो कहीं चोट करता है। और वो भाव परिवार के सदस्य को चोट करता है वो एक अलग बात है, वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी बाधित करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर आप अपने आप को उड़ेलते जाओ, आप अपने आप को उड़ेलते जाओ, ये आपकी साधना है, ये आपके लिए है, बिना किसी हिसाब किताब के अपने आप को उड़ेलते जाओ। और धीरे 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 इस उड़ेलने की प्रक्रिया में आप अनुभव करेंगे कि आपका अहंकार कहीं खो गया है, आपका अहंकार कहीं मिट गया है। और उड़ेलने की इस प्रक्रिया का यही प्रसाद है, आपका अगर अहंकार पिघल गया है तो आपने परमपिता परमात्मा को अपने भीतर पा लिया है, फिर उस गहन शांति को, उस गहन आनंद को आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो दूसरों पर जब आप करुणा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पर करुणा कर रहे होते हैं। दूसरों के प्रति जब आपके मन में प्रेम है तो कहीं ना कहीं आप अपने भीतर प्रेम के उस झरने को थोड़ा सा खोल रहे होते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो मैत्री के भाव को अपने भीतर प्रकट करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि स्नेह जो है हमारे भीतर बढ़ रहा है कि घट रहा है? इन डायमेंशंस को बहुत बारीकी से हमें देखते चले जाना चाहिए। हमें भले ही हमें ऐसा लगता है कि जीवन में धर्म की एक साधना है, जीवन को कैसे जीना है, अर्थ की एक साधना है कि जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनको कैसे जुटाना है, आनंद को कैसे पाना, आनंद की एक साधना है, और फिर इन सब से परे मुक्ति की एक साधना है। तो हम जीवन को और जीवन में उसकी पूर्णता को प्राप्त कर सकें, कैसे जिए इस जीवन को, यही रास्ता जो है वो माँ गीता हमारे सामने खोलती है। तो चलिए, कल हम इस विषय पर थोड़ी और बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। ओम।